न्यू साउथ वेल्स में कोरोना मामले अभी भी 1000 के पार। पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 1288 नए स्थानीय मामले। 48,000 कोरोना परीक्षणों के बाद विक्टोरिया में आए 176 नए स्थानीय कोरोना मामले। और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के चौथे टेस्ट में आज मैदान पर उतरेगा भारत। अब खबरें विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स में रोज आने वाले स्थानीय मामले अभी भी 1000 के पार बने हुए हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राज्य में 1288 नए मामले दर्ज किए गए हैं। प्रीमियर ग्लेडिस बेरेज़िकलिन का कहना है कि आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार अक्टूबर में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि बढ़ती टीकाकरण दर से स्थिति बेहतर भी हो सकती है।
We anticipate October will be the worst month for the number of people that lose their lives and also for the rate of people in hospital. And if I can just briefly explain that it's normally in the second week of illness that people get very sick. As the rate of vaccination increases, as more and more people are vaccinated and have that protection, we will see that rate of hospitalisation come down. But pleasingly today, New South Wales looks like will be the first state or territory to hit 70% first dose vaccination.
कल यानी कि 3 सितंबर सुबह 5 बजे से 12 चिंता के स्थानीय सरकारी क्षेत्रों में अब लोग व्यायाम के लिए 1 घंटे से ज्यादा जा सकते हैं। हालांकि कर्फ्यू और अन्य प्रतिबंध वहां अभी भी बने रहेंगे। अगर टीकाकरण के आंकड़ों पर नजर डालें तो न्यू साउथ वेल्स में पहली खुराक पाने वालों की संख्या 7 मिलियन पार कर गई है और कल लगभग 1,21,000 लोगों ने टीका लगवाया। न्यू साउथ वेल्स की मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कैरी चैन का कहना है कि आने वाले समय में COVID-19 टीकाकरण एक नियमित स्वास्थ्य प्रक्रिया बन जाएगी, क्योंकि नए स्ट्रेन सामने आएंगे और बूस्टर शॉट्स विकसित किए जाएंगे। वो कहती हैं कि mRNA तकनीक पहले से कहीं ज्यादा तेजी से वैक्सीन बनाने में मदद कर रही है।
We will be getting vaccinated regularly, a bit like seasonal flu. So every year in seasonal flu, they try and predict which strains are the predominating strains and we have a vaccine. What's really useful is some of the technology. We've made vaccines quicker than we've ever made them before, and so some of the mRNA technology gives us hope that we'll be able to rapidly accommodate to any changes.
Dr. Chant का कहना है कि उन्हें लगता है कि विज्ञान और टीकों में विश्वास के साथ ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे अधिक टीकाकरण वाला देश बन सकता है। विक्टोरिया के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि COVID-19 संक्रमण मुख्य रूप से कार्यस्थलों के माध्यम से हो रहा है और बहुत हद तक घरों में। ये जरूरी नहीं है कि लोग लापरवाही कर रहे हैं। आपको बता दें कि 48,000 कोविड परीक्षणों के बाद राज्य में 176 नए स्थानीय कोरोना मामले सामने आए हैं। ताजा मामलों में से 83 ज्ञात प्रकोपों से जुड़े हैं और 93 मामलों की फिलहाल जांच चल रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मार्टिन फॉले का कहना है कि सरकार ने कोविड को खत्म करने की रणनीति से हटकर आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है।
When the public health policy advice changes, in fact, it was very sobering. That's an excellent way to describe it. But you've got to follow the advice and the science. Delta has changed the script. That is a really significant moment, a point of pivot of how this pandemic has changed. And all Victorians, I'm sure, were equally sobered by that news.
विक्टोरिया के विपक्ष के नेता माइकल ओब्रायन का कहना है कि अगर प्रीमियर डैनियल एंड्रयूज प्रतिबंधों को आसान बनाने के लिए अपने रोडमैप में संशोधन नहीं करते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। विक्टोरिया के कार्यवाहक मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी बेन कोवी ने घोषणा की है कि पूरे राज्य में प्रशासित एस्ट्राजेनिका वैक्सीन के लिए 2 खुराकों के बीच का समय 12 सप्ताह से घटाकर अब 6 सप्ताह कर दिया गया है और अब इस संशोधन के बाद ये फाइजर वैक्सीन के साथ मेल खाता है। प्रोफेसर कोवी का कहना है कि अब राज्य में टीकाकरण बुकिंग प्रणाली सक्रिय है, जो कि टीकाकरण के प्रयासों को बढ़ावा देगी।
So this change and the additional supply of Pfizer vaccine from the Commonwealth when it arrives in Victoria will help us to reach our vaccination targets faster. But more importantly, they will really contribute to the response to community transmission, put a downward pressure on cases, and contribute to protecting our health system as we look after all Victorians.
अब खबरें भारत से। भारत में ईंधन की बढ़ती कीमतें आम लोगों के लिए मुश्किल बढ़ा रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार पर निशाना साधा।
कि कोई ये आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि देखिए ये तो इंटरनेशनल रेट बढ़ा है, इंटरनेशनल मार्केट पे डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा होगा, इसलिए हिंदुस्तान की जनता को चोट लग रही है, इसलिए ये पूरा मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन का तमाशा चल रहा है। मगर अजीब सी बात यह है कि जब यूपीए की सरकार थी 2014 में तो 105 रुपीज कच्चे तेल का दाम था, आज 71 रुपीज है, 32% ज्यादा था हमारे टाइम। गैस इंटरनेशनल प्राइस देख लीजिए, हमारे टाइम 880, आज 653, 26% कम। तो इंटरनेशनल मार्केट पे गैस प्राइस, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस गिर रहे हैं और हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा,
टुडे येट अगेन मिस्टर राहुल गांधी स्पोक अबाउट सर्टेन इश्यूज ऑफ व्हिच ही डिड नॉट हैव अ क्लियर नॉलेज अबाउट। ही इनफैक्ट ट्राइड टू रीडिफाइन जीडीपी इन अ रॉन्ग वे। लेट्स रिमाइंड राहुल गांधी ऑफ द फैक्ट दैट दोज इन फैक्ट व्हाइल इन गवर्नमेंट, दैट इज द यूपीए गवर्नमेंट, followed CNP, that is corruption, nepotism and policy paralysis as their core agenda, of course they would not be able to understand the real meaning of GDP. As far as GDP is concerned, only yesterday we had a historic report, we had a historic news, and the news was that for the financial year 2021-2022, the first quarter's growth rates of the GDP were out, and they were a phenomenal whooping 20.1%.
भारत में कोरोना के मामले नियंत्रण में आते दिख रहे हैं, लेकिन केरल में अभी भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। केरल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा कि कोविड-19 वेरिएंट C1.2 अपने आप को तेजी से बदल रहा है।
Many such changes occur in the course of the life cycle of the virus, and not all these changes are permanent. In other words, it's almost like the virus is experimenting with itself to see how it can adapt itself or change itself in subtle ways to adapt to the human host. Remember, this virus only found a human host since about a year and a half. So the virus is still trying to get to know our system. So it's going to continue to make changes. And this is not the only virus that does it. All viruses learn to adapt. And some viruses are cleverer than the others in terms of adaptation. So SARS-CoV-2 virus is considered moderate in its ability to mutate.
अब सुनते हैं डॉलर का हाल। आज यानी कि गुरुवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.79 रुपए और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 74 सेंट्स थी। अब खबरें खेल जगत से। ऑलराउंडर मोइन अली को आज से भारत के खिलाफ ओवल में शुरू हो रहे चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड का उपकप्तान बनाया गया है। जॉस बटलर को उनके दूसरे बच्चे के जन्म को देखते हुए छुट्टी दी गई है, जिसके बाद मोइन अली को उपकप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। 34 साल के मोइन ने अब तक इंग्लैंड की ओर से 63 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 5 शतक की मदद से 2,878 रन बनाए हैं। इसी के साथ उन्होंने 193 विकेट भी चटकाए हैं। ढाका में खेले गए पहले T20 में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए न्यूजीलैंड की टीम को 60 रन पे ऑल आउट कर दिया। T20 इंटरनेशनल में कीवी टीम का ये सबसे कम स्कोर है। इससे पहले 31 मार्च 2014 में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ भी 60 रन ही बनाए थे। कीवी टीम के कप्तान टॉम लेदम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन कोई भी कीवी बल्लेबाज ढाका की पिच पर बांग्लादेश के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाया, जिसके कारण पूरी टीम 60 रनों पर आउट हो गई। अब लेते हैं मौसम की जानकारी। बात करते हैं कल यानी शुक्रवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल की। शुरुआत करते हैं पर्थ से, जहां कल आसमान बादलों से घिरा रहेगा। अधिकतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में कल सुबह बारिश की संभावना रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में कल तेज बारिश की संभावना रहेगी, अधिकतम तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न के बाद बात देश की राजधानी कैनबरा की, जहां कल आंशिक बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 6 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं सिडनी की, जहां कल मौसम साफ रहेगा, यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में कल आंशिक बादल रहेंगे, यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में कल हल्की बारिश हो सकती है, यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। अंत में बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की, यहां का तापमान रहेगा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको बता देते हैं, www.sbs.com.au/hindi।